मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। एफआईएस के आज 4 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं संजित सिंह जो गांव बगना सेरी से हैं, जिनका जिला है रामवन जम्मू कश्मीर से हैं, उनका भी जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, इस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ मैं थोड़ी सी दूसरी बातें करना चाह रहा हूं। और इनफैक्ट मेरी यह जो बात है, यह ऑनलाइन जो हम लोग अपने ऑनलाइन के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको जो मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में है। मैं लगातार देख रहा हूं कि आप लोगों के जरिए ये रिक्वेस्ट आ रही है और मैं आप लोगों के इस रिक्वेस्ट का पूरा सम्मान करता हूं कि सर जो करंट अफेयर्स का कलेक्शंस एनालिटिकल अप्रोच ऑनलाइन के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, प्लीज़ वह हमें भी प्रोवाइड किया जाए। और हमें में दोनों तरह के स्टूडेंट होते हैं, वे एक वे जो हमारे क्लास के स्टूडेंट होते हैं, दूसरे वे जो हमारे डेली ऑडियो लेक्चर के स्टूडेंट होते हैं, वे भी हमारे उतने ही प्रिय स्टूडेंट हैं। हमें ये प्रोवाइड किए जाएं और इसके लिए अगर कुछ भुगतान भी करना होगा, कुछ पेमेंट भी देना होगा, तो हम देने को तैयार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा आप लोगों की इस भावना का एएफई पूरा सम्मान करती है, लेकिन यहां मैं एक पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि दो चीजें होती हैं। एक तो हर चीज की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन चलिए सीमा का हम यहां थोड़ा सा उल्लंघन भी कर दें, क्योंकि ये कोई अनैतिक नहीं होगा, कोई अवैधानिक नहीं होगा अगर वो आप लोगों को भी प्रोवाइड किया जाता है। जो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या वह आपके लिए उतना ही उपयोगी होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, है ना, उनको हम पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। सोच करके देखिए, 750-800 घंटे के लेक्चर्स आप सुन रहे हैं और उसमें मोर देन 90% लेक्चर्स सिर्फ मेरे हैं और मैं ही ये जो ऑनलाइन करंट अफेयर से तैयार करता हूं। तो मुझे मालूम है कि हर सब्जेक्ट के अंदर और हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के अंदर मैंने स्टूडेंट को क्या बताया है, राइट? तो स्टूडेंट ने वो लेक्चर सुने हुए हैं। तो अब जब मैं ऑनलाइन का करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि जो मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उन्हें क्या क्या चीजें मैं बता चुका हूं, वो सुन चुके हैं और सुनने के बाद इन बातों को जान चुके हैं। तो अब जब मैं उनके लिए करंट अफेयर्स तैयार करूंगा तो स्वाभाविक है कि वो जो जान चुके हैं उस पृष्ठभूमि में तैयार करूंगा, जो जान चुके हैं उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो मैं उसे एक्सटेंड करूंगा, यानी कि जो उन्हें और जानना चाहिए, पहली बात तो मैं उनमें उन बातों को शामिल करूंगा। और दूसरी बात कि चूंकि वो जान चुके हैं, यानी कि उनकी एक पृष्ठभूमि बन चुकी है, फाउंडेशन बन चुका है, तो उस फाउंडेशन में मुझे और क्या डालना चाहिए कि वो और मजबूत हो सके, उसके लिहाज से मैं चीजें लूंगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं, तो देखिए आप लोगों को भी मेरी बताने की कोशिश होती है, लेकिन मैं विषय के बारे में कभी कभार ही बताता हूं, अदरवाइज तो हम लोग करंट अफेयर्स को ही लेकर चलते हैं। तो मित्रों, अगर वही करंट कंटेंट, करंट अफेयर्स जो ऑनलाइन के स्टूडेंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अगर प्रोवाइड कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम आपके साथ कोई न्याय कर रहे हैं, बल्कि सच पूछे तो ये लगेगा कि हम आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज प्रोवाइड की जानी चाहिए थी वह चीज हम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और ऐसी चीजें फ्रेंड्स प्रतिक्रियावादी हो जाती हैं, यानी कि वो रिएक्शनरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, यही वह कारण है कि हम लोग ऑनलाइन के अपने स्टूडेंट्स को जो करंट अफेयर्स उपलब्ध करा रहे हैं वह उपलब्ध कराने की स्थिति में हम लोग अपने आप को नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मैं एएफईआईएस की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। दोस्तों, आइए अब कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना कि हमारे राष्ट्रपति जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संशोधित किया था, अब उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव और उस पर बहस क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक है, बहुत ही सम्मानित पद है ना, श्रेष्ठतम पद है, और उन्होंने अब संसद को संबोधित किया। ये पहला ही अवसर होता है जब राष्ट्रपति हर साल संसद को संबोधित करते हैं, तो संसद उनके प्रति एक प्रकार से थैंक्स महसूस करता है, आभार महसूस करता है कि आप आए और आपने हमें संबोधित किया। तो ये तो हो गया धन्यवाद। अब ये प्रस्ताव क्या है? अब होता यह है कि आपको मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रपति जब भी अपना संबोधन देते हैं तो उसमें दो बातें रखते हैं। एक तो यह कि मेरी सरकार ने अभी अब ये किया है अभी तक, और आगे हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किया है और ये हम करने जा रहे हैं। अब ये जो संसद है, जो लोकसभा है, स्वाभाविक है कि पूरा के पूरे देश का ये प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये जो दोनों सदन हैं, अब राष्ट्रपति ने जो बातें कही हैं उन पर ये डिस्कशन करता है, इस पर चर्चा करता है कि जो बातें कही गई हैं कि हमने ये किया वो कितनी सही है, इसके बाद जो आगे योजनाएं के लिए की जो बात हो रही है ये कितनी सही है, कितनी गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसी बहाने उस पर बहस हो जाती है, क्योंकि जो राष्ट्रपति कह रहे हैं वो सरकार की ओर से कह रहे हैं। तो इस पर बकायदे बहस होती है, और बहस होने के बाद फिर मतदान होता है, जिसमें यूं कह लीजिए कि एक धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है और सदन उसे पारित करता है। अब आप देखिए कि एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है जो आप समझ सकते हैं कि जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो पारित हो ही जाता है, क्योंकि इसका संबंध राष्ट्रपति से है, सरकार यानी कि जो दलगत राजनीति या सरकार होती है उससे नहीं, यानी कि प्रधानमंत्री से नहीं है, तो सामान्य तौर पर ये पारित ही होता है। लेकिन अगर ये पारित नहीं होता है तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अंदाजा आप खुद अपने अपने ढंग से लगाएं। बेहतर है कि इस पर मैं चुप ही रहूं। अगर यह धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, स्पेशली लोकसभा में पारित नहीं होता है, तो क्या होगा, है ना? ये इसके बारे में आप खुद निष्कर्ष निकाल लें। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले आपने एक शब्द सुना था, पत्थलगढ़ी आंदोलन। ये पत्थलगढ़ी आंदोलन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी, क्योंकि इन पत्थलगढ़ी आंदोलनकारियों ने कुछ लोगों की हत्या कर दी थी, तो उस समय ये न्यूज में भी आया था और अखबारों में भी आया था। बेसिकली झारखंड का जो एरिया है, वहां की जो जनजातियां हैं, उसकी एक ये प्रथा है पत्थलगढ़ी। याद रखिए, ये गढ़ी है, गाड़ना, गढ़ी नहीं है, ढक्कन का नहीं है, ये ड है, डमरू का है, पत्थलगढ़ी। तो देखिए, पत्थल यानी कि पत्थर, स्टोन, गढ़ी का मतलब है गाड़ना, जमीन में गाड़ना। तो ये क्या गाड़ रहे हैं? तो होता यह है कि जैसे कोई एक पत्थर है, उस पत्थर को वो गाड़ देते हैं, और उस पत्थर में किसी भी व्यक्ति का जो जन्म है उसकी और जो मृत्यु है उसकी सूचना होती है, है ना? तो ये उनकी एक परंपरा है, पत्थलगढ़ी। अब हुआ ये कि 1996 में, आपको ध्यान होगा कि हमारे यहां एक पेशा कानून आया था, पेशा कानून। ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसके बारे में भी जाने, मैं बहुत डिटेल में पेशा कानून के बारे में बताना नहीं चाहूंगा। तो उसमें सरकार ने वहां की पंचायतों को अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए, अपने स्थलों के लिए, संस्कृति के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए थे। ठीक है, तो अब हुआ ये कि वहां के फिर कुछ लोगों ने बकायदे कुछ पत्थरों पर ये लिखा कि बाहर के लोग यहां न आए, मतलब बाहर के लोग यहां आकर बस नहीं सकते। तो इस मान्यता, इस विचारधारा के जो लोग थे वो पत्थलगढ़ी आंदोलनकारी कहलाने लगे। मतलब हम अपनी सुरक्षा करेंगे, अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, अपने स्थलों की रक्षा करेंगे, उस दृष्टि से जो उग्र धारणा लेकर के चल रहे हैं, जो सच में पेशा कानून से भी आगे बढ़ करके बात हो गई, उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है पेशा कानून की, लेकिन जो उसको बहुत ही उग्र तरीके से लेने लगे, तो इस विचारधारा के लोगों को कहा जाने लगा पत्थलगढ़ी आंदोलनकारी, पत्थलगढ़ी समर्थक। तो ये थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आज के मुख्य विषय के बारे में बात करूं। आज के मुख्य विषय में मैं जो आर्थिक समीक्षा जो इस बीच में आई है, जो बजट से एक दिन पहले आती है दोस्तों, उसके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। देखिए, जो आर्थिक समीक्षा है उसके खासकर दो खंड होते हैं, एक तो उसका पूरा का पूरा आर्थिक खंड होता है, और दूसरा कुछ समय से उसका जो सामाजिक पक्ष है उस पर भी बात होने लगी है। तो यहां मैं जो रख रहा हूं आपके सामने, केवल आर्थिक खंड को रख रहा हूं। एक नया शब्द आपने सुना होगा, थालीनॉमिक्स। क्या थाली मतलब थाल, जिसमें हम भोजन करते हैं। तो थालीनॉमिक्स बेसिकली जो अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र को आप यूं कह लीजिए कि जो हमारे आम लोग हैं उनसे जोड़ने का एक तरीका है। देखिए, हर आदमी को भोजन चाहिए, तो मेरे पास भोजन की एक थाली है, तो मैं जो कुछ भी खाता हूं उसकी कीमत क्या है। अगर किसी आप आम आदमी को भी समझाएं कि भैया देखो, पहले जो तुम्हारी एक थाली होती थी वो पहले 20 रुपए की थी, अब वो 22 रुपए की हो गई है, तो तुरंत समझ जाएगा कि यार इसमें तो बढ़ गई, इसकी कीमत बढ़ गई, और ये जो थाली है 20 की थी अब 19 की हो गई है, तो उसकी कीमत कम हो गई। तो यह एक प्रकार से अर्थशास्त्र को समझाने का एक नया पैमाना है, और इस तरीके का कि उसे आम आदमी समझ सके। तो इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में इस थालिनॉमिक्स को शामिल किया गया और उसमें यह बताया गया कि पिछले 13 साल में जो शाकाहारी थाली थी उसकी कीमत में 29% की कमी हुई है। यानी कि जो शाकाहारी भोजन है, जो वस्तुएं होती हैं खाने में, अब खाने में क्या वस्तु होती है शाकाहारी में, मतलब आप समझ लीजिए कि एक अनाज होगा कोई ना कोई, चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो, एक सब्जी होगी और दाल, इन तीन चीजों को शामिल किया गया है। और ये जो सर्वेक्षण किया गया पूरे देश से किया गया है, तो इनमें 29% की कमी आई है जो कि, और जो मांसाहारी थाली है, मांसाहारी थाली में 18% की कमी आई है। यानी कि जो भोज्य पदार्थ हैं वो सस्ते हुए हैं। और इस प्रकार से ये बताया गया कि एक जो परिवार है, परिवार की हमारी जो इकाई है, हम 5 लोगों को लेकर के चलते हैं सामान्यतः, एक परिवार में 5 लोग, तो उसके आधार पर कैलकुलेट किया गया कि इस रेट से अगर हम 13 साल पहले और अभी के रेट को देखें तो जो शाकाहारी परिवार है उसको अब 10,887 रुपीज का फायदा हुआ, और जो मांसाहार करने वाले जो परिवार हैं उनको औसतन 11,787 रुपीज का फायदा हुआ है। यानी कि इनको आप यूं कह लीजिए कि खाद्यान्न पदार्थों के आधार पर लाभ पहुंचा है। तो यह है थालिनॉमिक्स। मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि यह नया शब्द है। मित्रों, आर्थिक समीक्षा में कुछ और बातें कही गई हैं, समय मेरे पास कम है, मैं थोड़ी सी ही बातें आपके सामने जल्दी जल्दी में रख पाऊंगा। पहला तो यह है कि यह कहा गया कि जो चीन ने अपना मॉडल अपनाया है, आर्थिक विकास का जो मॉडल अपनाया है, अगर हम उस मॉडल को अपना लें तो 2025 तक हम 4 करोड़ रोजगार पैदा कर सकते हैं और 2030 तक 8 करोड़ रोजगार दिए जा सकते हैं, चीन मॉडल को हम अपना लें तो। और इसके कारण फिर हमारा और भी दूसरे तरह के जो लाभ होंगे वह भी हमें मिलेंगे। एक बात जो इन्होंने कही कि हमारे यहां मेक इन इंडिया चल रहा है, असेंबल इन इंडिया को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए। असेंबल इन इंडिया क्या है कि हम बाहर से कुछ चीजें मंगाते हैं और यहां असेंबल करते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन देख लीजिए, तो मोबाइल फोन के जितने भी कल पुर्जे हैं वो बाहर से आते हैं और यहां असेंबल किया जा रहा है। तो इसमें सलाह दी गई है कि अगर हम असेंबल इन इंडिया को मेक इन इंडिया में शामिल कर लें तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा, और जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम स्थापित करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम पा लेंगे। आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत कमजोर है, बैंक की पहुंच लोगों तक नहीं है, और ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बैंक तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकें। इसके बाद एक बात कही गई किसानों को 2022 तक आय दुगनी करनी है, और इसके लिए उन्होंने जो बात कही, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उनका जो पशुधन है उस पर ध्यान दिया जाए, यानी कि पशुपालन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, 5 सालों में खासकर, तो पशुधन के क्षेत्र में 7.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई है, जबकि आप खेतों में आप देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में हार्डली 2% हो रही है। तो पशुधन की बढ़ोतरी से हम वास्तव में जो किसानों की आय है उस आय को 2022 तक दुगना कर सकेंगे। और इसके साथ ही साथ जो उन्होंने सजेशन दिया है कि जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसे बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि उससे जो वैल्यू एडिशन होता है उनके उत्पादन का, फसल की विविधता भी उससे बढ़ती है, उन्हें बहुत अच्छी कीमत मिल पाती है अपने फसल की, अपने उत्पाद की, और साथ ही साथ गांव में किसानों को रोजगार भी मिल पाता है। तो दोस्तों, कुछ बातें जो समीक्षा की थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और खासकर ये बातें इसलिए रखी हैं क्योंकि देखिए, जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर मेंस में, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप इसके बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं। तो अब हम लोग इतने बड़े अर्थशास्त्री तो है नहीं कि हम अपने कोई मौलिक विचार ला सकें, तो आर्थिक समीक्षा के विचारों को आप बकायदे कह सकते हैं कि जैसा कि आर्थिक समीक्षा में कहा गया है ये कर दिया जाए तो हो जाएगा, तो वह भी उनकी रिक्वायरमेंट को, यानी कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को काफी पूरा कर देता है। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, और इसमें 2 क्लिपिंग्स ऐसे हैं मित्रों जो आपको पढ़ना ही चाहिए। एक है उच्च सदनों की उपयोगिता का प्रश्न, इसे आप जरूर पढ़िएगा, यह नई दुनिया में छपा है, और एक है एक पाले में गांधी और अंबेडकर, ये आप रामचंद्र गुहा का नाम जानते हैं, उन्होंने लिखा है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बारे में कहा गया है। और आप मेंस के पेपर उठा करके देखें तो जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर में अक्सर महात्मा गांधी और अंबेडकर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उस दृष्टि से ये आर्टिकल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरे और आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने ढंग से देख लेंगे। दोस्तों, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: शंभु कुमार पंडित नागपुर से, जगदीश चौधरी गोरखपुर से, आकाश शर्मा, नितिन कुमार दिल्ली से, ऋचा बिस्ट नोएडा से, मानस झा दिल्ली से, और अनूप राज। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।